सातवां अध्याय कंबुज देश का राजनीतिक इतिहास। पहला, स्वतंत्रता की पुनः स्थापना। पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि आठवीं सदी में कंबुज देश की राजनीतिक एकता कायम नहीं रह सकी थी और वहां अनेक राज्यों में विभक्त हो गया था। श्री विजय के शैलेंद्र सम्राटों ने इस स्थिति से लाभ उठाया और कंबुज को जीत कर अपने अधीन कर लिया, पर वे देर तक उसे अपने आधिपत्य में नहीं रख सके। नौवीं सदी के प्रारंभ में वह फिर स्वतंत्र हो गया और उन्नति के मार्ग पर तेजी के साथ अग्रसर होने लगा। जयवर्मा द्वितीय। कंबुज की पुनः स्वतंत्रता का श्रेय जयवर्मा द्वितीय को दिया जाता है। वह एक महान वीर था और उस द्वारा कंबुज के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। शताब्दियों तक उसके गीत वहां गाए जाते रहे। मृत्यु के पश्चात उसे परमेश्वर का नाम दिया गया और कंबुज अनेक अभिलेखों में उसके लिए यही नाम प्रयुक्त किया गया है। जयवर्मा द्वितीय का अपना कोई लेख अब तक उपलब्ध नहीं हुआ, पर बाद के काल के कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिनसे उसके संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये अभिलेख उसके वंशज जयवर्मा द्वितीय, यशोवर्मा, सूर्य वर्मा और उदयादित्य वर्मा के समय के हैं। 811 ईस्वी के यशोवर्मा के विलेख से जयवर्मा द्वितीय के कुल तथा पूर्वजों का पता चलता है। उसके अनुसार उसकी नानी राजा पुष्कराक्ष की भांजी थी और उसका अपना विवाह रुद्रवर्मा की भांजी के साथ हुआ था। पुष्कराक्ष और रुद्रवर्मा का उल्लेख पहले किया जा चुका है। आठवीं सदी के में जब कंबुज अनेक राज्यों में विभक्त हो गया था तो दक्षिणी कंबुज, जल कंबुज में जो अनेक राज्य थे उनमें से शंभुपुर और आनंदितपुर पर पुष्कराज का शासन रहा था। यह स्पष्ट है कि माता की ओर से जयवर्मा द्वितीय का शंभुपुर आनंदितपुर के राजकुल के साथ संबंध था, पर वह स्वयं भी राजकुल का था या नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। 817 ईस्वी के फनोम संदक से प्राप्त यशोवर्मा के अभिलेख में यह कहा गया है कि जयवर्मा ने प्रजा के हित के लिए अति निर्मल राजवंश में जन्म लिया था। यो भूत प्रजोदयायैव राजवंशे ति निर्मल। इससे यह संकेत मिलता है कि वह स्वयं भी राजवंश का था, पर कंबुज के पुराने राजवंशों के साथ उसका संबंध अपनी माँ और पत्नी द्वारा ही था, यह भी सर्वथा स्पष्ट है। अभिलेखों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि इस राजा ने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में कंबुज के राज्य को प्राप्त नहीं किया था। कंबुज पहले शैलेंद्र सम्राटों के अधीन था, जिन्होंने इंडोनेशिया क्षेत्र के जावा आदि प्रायः सभी द्वीपों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया हुआ था। जयवर्मा द्वितीय भी पहले जावा में रहा था, वहां से वह कंबुज आया। संभवतः शैलेंद्र सम्राट उसे कंबुज के शासन के लिए नियुक्त किया गया था, पर अवसर पाकर वह वहां का स्वतंत्र राजा हो गया। कंबुज फिर से जावा शैलेंद्र साम्राज्य के प्रभुत्व में न आ जाए, इस प्रयोजन से उसने अनेक तांत्रिक अनुष्ठान भी कराए। राजा उदयादित्य वर्मा द्वितीय का एक अभिलेख 947-74 ईस्वी का है, जो सदोक काथोम से उपलब्ध हुआ है। इसमें 340 पंक्तियां हैं, जिनमें 130 संस्कृत श्लोक में है और शेष कमेर भाषा में, जो कंबुज देश की स्थानीय भाषा थी। इस अभिलेख से जयवर्मा द्वितीय की राज्य प्राप्ति के संबंध में अच्छा प्रकाश पड़ता है, अतः इसके कुछ भाग को यहाँ उद्धृत करना उपयोगी होगा। यह महापुरोहित परिवार पहले इंद्रपुर विषय जिले के भद्रयोगी गांव में रहता था। परम भट्टारक परमेश्वर जयवर्मा द्वितीय शासन करने के लिए जावा से इंद्रपुर आए। पूज्य श्रीमान गुरु शिव कैवल्य परम भट्टारक परमेश्वर के राजपुरोहित बने। फिर परम भट्टारक परमेश्वर ने इंद्रपुर छोड़ दिया और शिव कैवल्य भी उन्हीं के साथ चले गए। अब वे पूर्व दिशा विषय आ गया और वहां परम भट्टारक ने कृपा पूर्वक उन्हें भूमि प्रदान की और कुटी नामक गांव बसाकर वहां भी उन्हें दे दिया। फिर परम भट्टारक परमेश्वर हरिहरालय नगरी में शासन करते रहे और शिव कैवल्य भी अपने परिवार के साथ वहीं निवास करने लगे। फिर परम भट्टारक परमेश्वर ने अमरेंद्रपुरी नगरी बसाई और शिव कैवल्य भी उनके सेवा के लिए वहीं चले गए। शिव कैवल्य ने अमरेंद्रपुर के समीप एक भूखंड की परम भट्टारक से याचना की, जो उसे दे दिया गया। उसने अपने परिवार की कुटी से बुलाकर वहां भवालय नामक गांव में बसा दिया गया। फिर परम भट्टारक परमेश्वर शासन के लिए महेंद्र पर्वत गए और शिव कैवल्य भी उनकी सेवा के लिए वहीं चले गए। फिर हिरण्य दामा नामक ब्राह्मण जो मंत्र विद्या में निष्णात था, देश भारत से आया। परम भट्टारक ने उसे इस प्रयोजन से आमंत्रित किया था कि वह कोई ऐसा विधान पुरुष चरण करे जिससे कंबुज देश जावा के अधीन न रह सके और उसका अपना स्वतंत्र चक्रवर्ती राजा हो। ब्राह्मण ने विनाशक तंत्र के अनुसार विधि तैयार की और देवराज की पूजा का प्रारंभ कराया। ब्राह्मण ने विनाशिक समो और सिर छेद तंत्रों को आदि से अंत तक बोलकर लिखवा दिया और साथ ही तंत्र की विधि शिव कैवल्य को सिखा दी। साथ ही देवराज की पूजा की विधि भी शिव कैवल्य को सिखा दी थी। परम भट्टारक परमेश्वर और ब्राह्मण हिरण्यामा ने शपथ ग्रहण की कि देवराज की पूजा की विधि को संपन्न करने के लिए केवल शिव कैवल्य के परिवार को ही काम में लाया जाएगा, किसी दूसरे को नहीं। शिव कैवल्य ने यह पूजा विधि अपने सभी कुटुंबजनों को सिखाई। तब परम भट्टारक परमेश्वर शासन के लिए हरिहरालय लौट आए और देवराज को भी वहीं ले जाया गया। शिव कैवल्य और उसके कुटुंबीजन पूर्वत पौराहित्य कार्य करते रहे। शिव कैवल्य की मृत्यु परम भट्टारक के शासनकाल में हो गई। परम भट्टारक परमेश्वर का देहावसान भी हरिहरालय में नगरी में हुआ। उनके उत्तराधिकारी देवराज को विविध राजधानियों में ले जाते रहे और सर्वत्र रक्षक देवता के रूप में राज्य की रक्षा करते रहे। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि जयवर्मा द्वितीय जावा से शासन के लिए कंबुज आया था। वहां उसने अनेक राजधानियों नगरों में शासन किया और अंत में वह इस देश का स्वतंत्र शासक बन गया। उसकी राजधानी हरिहरालय नगरी थी और विविध अभिलेखों के आधार पर यह माना गया कि वह 802 ईस्वी में स्वतंत्र राजा की स्थिति में कंबुज के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। देवराज की पूजा कोई विशिष्ट तांत्रिक विधि थी जिसका प्रारंभ जयवर्मा द्वितीय द्वारा कंबुज में कराया गया था। इससे पूर्व यह विधि जावा में प्रयोग में लाई जाती थी और संभवतः वहां भारत से गई थी। जयवर्मा ने शिव कैवल्य को अपना राजपुरोहित नियुक्त किया था और यह पद उसके वंशजों को चिरकाल तक स्थित रहा। हरिहरालय नगरी की स्थिति अंडकोर क्षेत्र के उत्तर में प्रहखान में थी। इसके समीप एक अभिलेख उपलब्ध हुआ है जिसमें हरिहरालय में ग्राम वृद्ध और पुरुष प्रधान के नाम एक राजकीय आदेश उत्कीर्ण है। इंद्रपुर नगर कंबुज देश के उत्तर पूर्वी भाग में था और अमरेंद्रपुर की स्थिति अंगकोर थोम के उत्तर पश्चिम में 100 मील की दूरी पर थी। महेंद्र पर्वत भी अंडकोर थोम के उत्तर पश्चिम में था जहां आजकल फनोम कुलेन नामक पहाड़ी है। कुटी ग्राम के अंगकोर थोम के पूर्व में विद्यमान बनते कदेई के साथ एकता प्रतिपादित की गई है। जयवर्मा द्वितीय जो निरंतर अपनी राजधानियां बदलता रहा, इसके कारणों के संबंध में विद्वानों द्वारा अनेक उत्टंकनाएं की गई हैं। संभवतः राजकीय आवश्यकता की दृष्टि से वह ऐसा करने के लिए विवश हुआ था, पर वह अपनी राजधानी को पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाता गया। यह स्पष्ट है अंत में उसने अंगकोर थोम के क्षेत्र में विद्वान हरिहरालय को अपनी राजधानी बना लिया और 52 वर्ष के सुदीर्घ शासन के पश्चात 854 ईस्वी में यही उसकी मृत्यु हरिहरालय में इस राजा द्वारा उन वास्तुकृतियों का निर्माण प्रारंभ किया गया। अंतकोर थोम की आदित्य कृतियों के रूप में जो पूर्णता को प्राप्त हुई, हरिहरालय के लिए जो स्थान जयवर्मा ने चुना था वह एक सुंदर नगर के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यह एक कृत्रिम सरोवर है जो 2 मील लंबा और 3.5 मील चौड़ा है। सरोवर के तट पर हरिहर का मंदिर है और बीच में एक द्वीप पर एक नाग मंदिर बना है। सरोवर के समीप ही हरिहरालय नगरी का निर्माण किया गया था जिसकी प्राचीर परिखा महाद्वार आदि अब तक भी विद्यमान है। यद्यपि अंदर की इमारतें अब नष्ट हो चुकी हैं, 905 ईस्वी के एक अभिलेख में जयवर्मा द्वितीय के विषय में यह लिखा गया है कि श्री जयवर्मा राजाओं का सनातन अधिपति था जिसके चरणों को प्रणाम करते हुए राजाओं के मुकुटों की चमकीली मणियां और भी अधिक चमक उठती थी। वह प्रजा के कल्याण के लिए परिशुद्ध राजवंश में एक ऐसे पद्म की भांति प्रादुर्भूत हुआ जो भूमि से असंबंध हो। इस राजा को देखकर ललनाएं कहती है, मेरी आंखों तुम बंद रहना जिससे यह शुभ रूप एक क्षण के लिए भी हमारे मन से विलग न हो। उसके सौंदर्य की कोई उपमा नहीं हो सकती। यद्यपि चंद्रमा का उसका मुख से सादृश्य है, पर चंद्रमा में कोई दोष है जिससे राहु उसे ढक लेता है। समुद्र जिसकी मेखला है, ऐसी पृथ्वी उसकी भुजाओं के लिए अधिक भारी नहीं है। उसकी भुजा पृथ्वी के शासकों को प्रणत करने के लिए पर्याप्त है। उसका आसन सिंहों के सिर पर है, उसकी आज्ञाएं राजाओं के सिरों पर आसीन है। उसकी राजधानी महेंद्र पर्वत पर है, तब भी वह निराभिमान है। इसमें संदेह नहीं कि जयवर्मा द्वितीय एक अत्यंत योग्य एवं प्रतापी शासक था। कंबुज देशों को शैलेंद्रों की अधीनता से मुक्त कर उसने वहां एक शक्तिशाली तथा समृद्ध राज्य की स्थापना की। कंबुज का जो उत्कर्ष बाद के समय में हुआ उसकी आधारशिला जयवर्मा द्वितीय द्वारा ही रखी गई थी। कंबोडिया के लोग आज तक भी उसे केतुमाल नाम से स्मरण करते रहे और उसके संबंध में वहाँ बहुत सी दंत कथाएँ प्रचलित हैं। कंबोडिया में अंग कोरवाद आदि के जो बहुत से विशाल मंदिर हैं, स्थानीय अनुसूति के लिए अनुसार उनका निर्माता भी यही राजा था। कहते हैं कि वह वस्तुतः इंद्र का पुत्र था। इंद्र ने उसे स्वर्ग लोक में बुलाया और एक वास्तुशिल्पी को उसके साथ भूलोक भेजा। यह वास्तुशिल्पी एक अप्सरा का पुत्र था और इंद्र की राजसभा के देवपुत्रों से इसकी वास्तुशिल्प सीखा था। इसी ने इंद्रलोक से आकर कंबुज के विशाल मंदिरों आदि का निर्माण किया। कंबोडिया के राजप्रसाद में एक तलवार है। सब राजा अपने राज्याभिषेक के समय जिसे हाथ में लेते रहे। समझा जाता है कि जब तक यह तलवार रहेगी राज सिंहासन को कोई आँच नहीं आने पाएगी। लोगों का विश्वास है कि यह तलवार जयवर्मा द्वितीय की ही है। इसकी रक्षा के लिए जो व्यक्ति नियुक्त है उन्हें जयवर्मा के समय के ब्राह्मणों का वंशज माना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से कंबोडिया अत्यंत समृद्ध है। उसके मंदिर और प्रसाद वास्तुतः आश्चर्य की वस्तुएं हैं। यह स्वीकार कर सकना तो संभव नहीं है कि उन सब का निर्माण जयवर्मा द्वितीय द्वारा ही कराया गया था, पर इसमें संदेह नहीं कि उन कृतियों का श्री गणेश इसी प्रतापी राजा द्वारा किया गया था। जयवर्मा तृतीय। जयवर्मा द्वितीय का पुत्र जयवर्धन था, जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात जयवर्मा नाम से कंबुज के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इस जयवर्मा तृतीय के संबंध में कोई महत्वपूर्ण बात ज्ञात नहीं है, पर उसके काल में कंबुज राज सुव्यवस्थित रहा। 877 ईस्वी में इस राजा की मृत्यु हुई। जयवर्धन या जयवर्मा तृतीय की मृत्यु के साथ उस राजवंश का अंत हो गया जिसका सूत्रपात जयवर्मा द्वितीय द्वारा किया गया था। यद्यपि जयवर्मा द्वितीय और जयवर्मा तृतीय ने एक सदी से भी कम समय तक शासन किया, पर इसमें संदेह नहीं कि उनका शासनकाल कंबुज देश के लिए अत्यंत महत्व का था। कंबुज देश के उत्कर्ष का श्री गणेश इन्हीं राजाओं के समय में हुआ। 863 ईस्वी में लिखे गए मानचू नामक चीनी ग्रंथ के अनुसार खमेर कंबुज राज की उत्तरी सीमा दक्षिणी चीन के यूनान प्रांत तक विस्तृत थी, तभी संभव था, जबकि लाओस भी कंबुज राज के अंतर्गत हो गया, क्योंकि इस चीनी ग्रंथ के लेखक ने 832 ईस्वी में इन प्रदेशों की स्वयं यात्रा की थी, अतः उसके कथन की प्रामाणिकता से इनकार नहीं किया जा सकता। अरब लेखकों के विवरणों द्वारा भी यह सूचित होता है कि इस काल के कंबुज राज अत्यंत शक्तिशाली तथा समृद्ध था। याकूबी 875 ईस्वी ने लिखा है कि खमेर राज बहुत विस्तृत था और अनेक राजा उसके राजा की अधीनता स्वीकार करते थे। एक अन्य अरब लेखक इब्न रोस्तेह 903 ईस्वी के अनुसार खमेर राज में 80 न्यायाधीश थे जो पूर्णतया निष्पक्ष रूप से न्याय कार्य संपन्न किया करते थे। यदि राजा के पुत्र को भी उनके समूह उपस्थित किया जाए तो वे उसके मामले का निर्णय उसी ढंग से करते थे जैसे कि किसी सामान्य नागरिक का मामला हो। दूसरा अंगकोर राज्य का राजा इंद्रवर्मा 877 ईस्वी में जयवर्मा द्वितीय की मृत्यु के पश्चात इंद्रवर्मा कंबुज के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। संभवतः जयवर्मा तृतीय की कोई संतान नहीं थी। इस दशा में इंद्रवर्मा नामक व्यक्ति ने कंबुज के शासन सूत्र को अपने हाथों में ले लिया। इंद्रवर्मा कौन था, उसका जयवर्मा द्वितीय के वंश के साथ क्या संबंध था, इस विषय में 879 ईस्वी में एक अभिलेख से प्रकाश पड़ता है जो सियम रब प्रदेश में रूलो के प्रहा शवो मंदिर में उत्कीर्ण है। इस अभिलेख के अनुसार इंद्रवर्मा क्षत्रिय पृथ्वी चंद्र वर्मा का पुत्र था और उसकी माता श्री रुद्र वर्मा की पुत्री तथा श्री नृपति नंद वर्मा की दौहित्री थी। इसी श्री रुद्र वर्मा की भांजी का विवाह राजा जयवर्मा द्वितीय के साथ हुआ था और जयवर्मा तृतीय रुद्र वर्मा की भांजी का ही पुत्र था। इस प्रकार इंद्रवर्मा का जयवर्मा तृतीय के साथ अपनी माता की ओर से संबंध भी था। संभवतः इंद्रवर्मा ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसका जयवर्मा तृतीय के साथ पारिवारिक संबंध था और किसी अन्य निकट संबंधी के न होने के कारण जिसे राज सिंहासन का अधिकारी स्वीकार कर लिया गया था। इंद्रवर्मा तथा उसके उत्तराधिकारियों के जो अनेक अभिलेख मिले हैं उनमें जयवर्मा द्वितीय और जयवर्मा तृतीय का आदरपूर्वक उल्लेख किया गया है। इससे सूचित होता है कि इंद्रवर्मा ने किसी षड्यंत्र या विद्रोह द्वारा कंबुज के राज को प्राप्त नहीं किया था, अपितु किसी अन्य निकटतर संबंधी के न होने के कारण वही राज का न्याय अधिकारी था। इंद्र वर्मा का विवाह इंद्रदेवी नामक कुमारी के साथ हुआ था, जो एक अभिलेख के अनुसार राजा महीपति वर्मा की पुत्री थी। महीपति वर्मा का पिता राजेंद्र वर्मा था और उसकी माता नृपति देवी थी। इसी अभिलेख के अनुसार राजेंद्र वर्मा का संबंध उच्च प्रतापी राजा पुष्कराक्ष के साथ भी था, जिस द्वारा अनंतपुर और शंभुपुर के राज्यों को मिलाकर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की गई थी। इस पुष्कराक्ष का उल्लेख इस ग्रंथ में पहले किया जा चुका है। इसमें संदेह नहीं कि इंद्र वर्मा वहाँ स्वयं राजकुल का था। वहाँ अपनी माता तथा पत्नी की ओर से भी उसका कंबुज देश के प्राचीन राजकुलों के साथ संबंध था। विविध अभिलेखों में इंद्र वर्मा के कुल का परिचय देते हुए जिन राजाओं के नाम दिए गए हैं, उनका शासन किन किन प्रदेशों में था और कंबुज देश के शासन तंत्र में उनकी क्या स्थिति थी, यह स्पष्ट नहीं है। संभवतः वे सब पृथ्वी नंद वर्मा, नृपति वर्मा आदि स्थानीय शासक थे और जय वर्मा द्वारा द्वितीय तथा जय वर्मा तृतीय के सामंतों की स्थिति में अपने अपने प्रदेश का शासन किया करते थे। इंद्र वर्मा का पिता पृथ्वी नंद वर्मा भी इसी प्रकार का सामंत राजा था और जय वर्मा तृतीय के कोई संतान न होने की दशा में इंद्र वर्मा ने अपने पारिवारिक संबंधों के कारण कंबुज के राज सिंहासन को प्राप्त कर लिया। संभवतः इंद्र वर्मा द्वारा कंबुज के राज्य की प्राप्ति में शिव सोम उसका प्रधान सहायक था। यह शिव सोम जय वर्मा के मामा श्री जयेंद्र धीपति वर्मा का पौत्र था और शास्त्रों का अगाध विद्वान था। इंद्र वर्मा शिव सोम का शिष्य था, क्योंकि शिव सोम का संबंध जय वर्मा के कुल के साथ भी था, अतः इस प्रभावशाली एवं विद्वान व्यक्ति का सहाय इंद्र वर्मा द्वारा राज प्राप्ति में अवश्य उपयोगी रहा होगा। इंद्र वर्मा का राज्यकाल 887 से 889 ईस्वी। राजा इंद्र वर्मा की शासन की घटनाओं के विषय में कोई महत्वपूर्ण बातें हमें ज्ञात नहीं है, पर इसके अभिलेखों से यह अवश्य सूचित होता है कि वह एक प्रतापी राजा था और चीन, चंपा तथा यवदीप जावा में उसके आदेशों का पालन होता था। प्रसत कंडोल अभिलेख का यह पद उद्धरणीय है। चीन, चंपा, यवदीप भूभृदुतम ग मस्तके यस्याम लाभमिता माला निर्मला चुंबल लायते। चीन, चंपा और यवदीप के राजा उसकी आज्ञाओं रूपी मालती पुष्पों की निर्मल मालाओं को अपने मस्तकों को झुकाकर ग्रहण करते थे। चंपा राज की स्थिति का कंबुज के पूर्व में थी और इन दोनों राज्यों में प्रायः संघर्ष चलता रहता था। 9वीं सदी के प्रारंभ भाग में चंपा का एक सेनापति कंबुज देश पर आक्रमण करता हुआ बहुत दूर तक आके बढ़ गया और उसने इस राज्य का बुरी तरह से ध्वंस भी किया था। राजा जयवर्मा द्वितीय के नेतृत्व में जब कंबुज में नव शक्ति का संचार हुआ तो चंपा के लिए पुनः कंबुज पर आक्रमण कर सकना संभव नहीं रहा, पर इन राज्यों में विरोध एवं विद्वेष 9वीं सदी में निरंतर जारी रहा, जिसके कारण ही संभवतः इंद्र वर्मा ने चंपा पर आक्रमण किया और उसे अपने वशवर्ती तथा आज्ञानुवर्ती बनाने में सफलता प्राप्त की। चंपा के इतिहास की जो सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर इंद्र वर्मा के इस दावे का न समर्थन होता है और न खंडन। अधिक संभव यही है कि चंपा को अपना वशवर्ती बनाने में इंद्र वर्मा सफल हुआ था। जहाँ तक यवदीप जावा का संबंध है, यह काल उसकी शक्ति के ह्रास का समय था। मध्य जावा के मतराम राज्य का इस समय अंत हो गया था और जावा की राजनीतिक शक्ति का केंद्र पूर्वी प्रदेशों में विकसित होने लग गया था। संभवतः इंद्र वर्मा ने जावा की राजशक्ति के हास की परिस्थिति से लाभ उठाया और चंपा के समान उसे भी अपना वशवर्ती बना लिया था। 8वीं सदी के उत्तरार्ध और 9वीं सदी के प्रारंभ काल में जावा और चंपा दोनों ही कंबुज की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे और उन्होंने इस देश को आक्रांत भी किया था, पर जय वर्मा द्वितीय और जय वर्मा तृतीय द्वारा कंबुज की शक्ति में जो वृद्धि की गई, इंद्र वर्मा ने उससे लाभ उठाया और अपने पड़ोस के दोनों राज्यों को परास्त कर अपने अधीन कर लिया। प्रसत कंडोल अभिलेख में चंपा और यवदीप के साथ चीन का भी इंद्र वर्मा के वशवर्ती राज्य के रूप में उल्लेख किया गया है। यह तो स्पष्ट ही है कि संपूर्ण चीन कंबुज राज के अधीन नहीं था, पर दक्षिणी चीन के यूनान प्रांत में भी अनेक भारतीय उपनिवेशों की सत्ता थी और दक्षिणी चीन के ये भारतीय राज्य 8वीं सदी में ही चीन की अधीनता से स्वतंत्र हो गए थे। चीन के तांग वंशी सम्राटों ने इन्हें जीतने का बहुत प्रयत्न किया, पर वे कभी पूर्णतया सफल नहीं हो सके। उत्तरी यूनान में मिथिला राष्ट्र की स्थिति थी और दक्षिणी यूनान में अलावी राष्ट्र की। ये दोनों भारतीय उपनिवेश थे और इनका स्वरूप प्रायः वैसा ही था जैसा कि वियतनाम के चंपा राज का था। इंद्र वर्मा ने अपने लेख में जिस चीन को अपना वशवर्ती बनाने का उल्लेख किया है वह संभवतः दक्षिणी चीन का यूनान प्रांत ही था जिसके मिथिला तथा आलवी राज्यों को जीतकर उसने अपने अधीन कर लिया था। इंद्र वर्मा केवल विजेता ही नहीं था अपितु कला का भी प्रेमी था। वास्तुशिल्प पर उसने बहुत ध्यान दिया। एक अभिलेख के अनुसार रहा सिंहासन पर आरूढ़ होने के तत्काल पश्चात उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि 5 दिनों के अंदर अंदर वह इस द्वारा नए निर्माण का कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। उसने स्वयं एक सिंहासन, एक इंद्रयान, एक प्रकार का वाहन और इंद्र विमानक तथा इंद्र प्रसादक नाम के 2 राज प्रसादों का प्रारूप तैयार किया, फिर उनका निर्माण शुरू करा दिया। उसने शिव और दुर्गा की भी 3-3 मूर्तियां स्वयं बनाई थी। स्वशिल्प रचिता और उस द्वारा बनवाए गए अनेक मंदिरों तथा इंद्र तटाक नामक एक तालाब का विविध अभिलेखों में उल्लेख है। इसमें संदेह नहीं कि राजा इंद्र वर्मा से संरक्षण व प्रोत्साहन प्राप्त कर कंबुज में शिल्प और कला का बहुत अच्छा विकास हुआ था। मृत्यु के पश्चात यह राजेश्वरलोक नाम से प्रसिद्ध हुआ। यशो वर्मा इंद्र वर्मा का पुत्र यशोवर्धन था जो अपने पिता के पश्चात 889 ईस्वी में यशो वर्मा नाम से कंबुज देश के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसकी शिक्षा के लिए इंद्र वर्मा ने वाम शिव नामक आचार्य की नियुक्ति की थी जो शिव कैवल्य के भाई का पौत्र था। आचार्य शिव कैवल्य का उल्लेख पहले किया जा चुका है। वह तंत्रवाद का महान पंडित था। वाम शिव से शिक्षा प्राप्त कर शास्त्रों और काव्यों में यशो वर्मा की अबाध गति हो गई थी और विद्या तथा साहित्य के प्रति उसे बहुत अनुराग हो गया था। उसके जो अभिलेख उपलब्ध हुए हैं उनमें साहित्य तथा काव्य की अनुपम छटा दिखाई देती है और यह भी सूचित होता है कि यह राजा कवियों का आश्रयदाता था। कविता की दृष्टि में अत्यंत उत्कृष्ट होते हुए भी यशो वर्मा के अभिलेख इसके शासनकाल की राजनीतिक घटनाओं पर विशेष प्रकाश नहीं डालते, पर उनसे यह अवश्य ज्ञात हो जाता है कि यशो वर्मा के राज का विस्तार कहां कहां तक था। एक अभिलेख के अनुसार इसके राज की सीमा चीन के समुद्र तक थी। चीन संधि पयो दिभ्याम मित्वोर एन पालित। राजा राजेंद्र वर्मा 944 ईस्वी के एक अभिलेख से सूचित होता है कि यशो वर्मा का राज चीन और चंपा तक विस्तीर्ण था। इंद्र वर्मा द्वारा कंबुज का जो राज विस्तार किया गया था यह यशो वर्मा के समय में भी अक्षुण्ण था। यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि उसने भी किसी प्रदेश की विजय की हो या किसी अधीनस्थ प्रदेश के विद्रोह को शांत करने के लिए शस्त्र शक्ति का प्रयोग किया हो। इस संबंध में कोई संकेत अभिलेखों से नहीं मिलता। एक अभिलेख से यह अवश्य आया है कि उसने अपने नाविक बेड़े को विजय के लिए चारों ओर प्रसारित किया था। नौका बुदम जैन जयाया याने प्रसारित पितान सितम समांतर। पर सामुद्रिक शक्ति का यह उपयोग किस प्रयोजन से और किस क्षेत्र में किया गया था यह ज्ञात नहीं है। यशो वर्मा के अभिलेखों में राजा द्वारा बनवाए गए मंदिरों और आश्रमों आदि का सुव्यवस्थित रूप से वर्णन है। उस द्वारा उत्कीर्ण प्राहबात स्थल शिलालेख में 50 श्लोक हैं और उसकी 11 प्रतियां विविध स्थानों पर उपलब्ध हुई हैं। इनके अन्य सब श्लोक एक ही हैं, केवल एक श्लोक में अंतर है जिसमें कि उस विशेष देवता का उल्लेख है जिसके उपलक्ष्य में वह अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था। थनल बरे स्थल का अभिलेख में 108 श्लोक हैं और वह 5 विभिन्न स्थानों पर उत्कीर्ण है। इसी प्रकार लोले स्थल अभिलेख में 93 श्लोक हैं और उसकी भी 2 प्रतियां उपलब्ध हैं। इन विविध अभिलेखों द्वारा यशो वर्मा के समय के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन पर बहुत प्रकाश पड़ता है क्योंकि इनमें आश्रमों तथा देव मंदिरों के संबंध में अनेक नियमों तथा राजकीय आदेशों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यशो वर्मा से पहले के राजाओं ने कंबुज देश में जो अभिलेख उत्कीर्ण कराए थे उनके लिए पल्लव दक्षिण भारत लिपि का प्रयोग किया गया था, पर अब वहाँ पल्लव लिपि के साथ साथ उत्तर भारत की लिपि भी प्रयुक्त की जाने लगी थी। इसी प्रकार का परिवर्तन जावा में भी हुआ था और इस काल के लगभग वहाँ भी उत्तर भारत की लिपि का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। इससे अनुमान किया गया है कि 9वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के उत्तरी प्रदेशों से भी बहुत से नए उपनिवेशक दक्षिण पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों में जाकर आबाद हुए थे। यशो वर्मा स्वयं शैव धर्म का अनुयायी था, पर बौद्ध धर्म के प्रति भी उसकी आस्था थी। उसने जहाँ बहुत से शैव और पौराणिक हिंदू मंदिर बनवाए वहां बौद्ध विहारों की भी उपेक्षा नहीं की। अंगकोर थोम के राजप्रसाद के समीप तेपनम के मंदिर में एक अभिलेख उत्कीर्ण है जिसके पहले 2 श्लोक में शिव स्तुति के अनंतर 3रे श्लोक में कहा गया है कि जिसने स्वयं अवगत करके इस भाव के बंधन से मुक्ति के साधनों को तीनों लोगों को समझाया और जिसने निर्वाण वर को प्रदान किया उसी वध चरण करुण हृदय बुद्ध को नमस्कार है। एक अन्य अभिलेख में यशो वर्मा द्वारा बनवाए गए बौद्ध आश्रम विहार का उल्लेख है। वहाँ लिखा है, राजा धीराज कम्बुज भूमिपति राजा यशो वर्मा ने बौद्धों के हित के लिए इब सौगात आश्रम को बनवाया। अभिलेखों के अनुशीलन में यशो वर्मा के शासनकाल का जो चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित होता है उसके अनुसार इस राजा के शासन में कम्बुज राज अत्यंत समृद्ध था, जनता सुखी एवं संपन्न थी, देश में सर्वत्र शांति विराजती थी और राजा अपनी प्रजा की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता था। यशो वर्मा ने एक नई नगरी की भी स्थापना की थी जिसका नाम पहले कम्बुजपुरी रखा गया और बाद में बदलकर यशोधरपुर कर दिया गया था। इस नगरी का निर्माण फनोम बखेन नामक पहाड़ी शिखर प्रदेश पर किया गया था। अंगकोर थोम क्षेत्र के कुछ अवशेष इस समय भी इस पहाड़ी पर विद्यमान है। पहले यह माना जाता था कि अंगकोर थोम का ही प्राचीन नाम यशोधरपुर था और उसका निर्माण यशो वर्मा द्वारा ही कराया गया था, पर अब यह समझा जाता है कि अंगकोर थोम बाद में बना था। यद्यपि उसका निर्माण उसी स्थान के समीप किया गया था जहां के यशो वर्मा द्वारा यशोधरपुर नगरी बसाई गई थी। वर्तमान अंगकोर थीम में सुव्यवस्थित क्षेत्र में वह नगरी भी आ गई है जिसकी स्थापना यशो वर्मा द्वारा की गई थी। इस दृष्टि से अंगकोर थोम के श्री गणेश का श्रेय यशो वर्मा को देना असंगत नहीं है। 908 ईस्वी में यशो वर्मा की मृत्यु हुई। कम्बुज राजाओं की परंपरा के अनुसार मृत्यु के पश्चात उसे परम शिवलोक का विरुद्ध प्रदान किया गया जो शिव के इस उपासक राजा के लिए सर्वथा उपयुक्त था। यशो वर्मा के उत्तराधिकारी। यशो वर्मा के बाद उसके दो पुत्र कम्बुज देश के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। इनके नाम हर्ष वर्मा प्रथम और ईशान वर्मा द्वितीय थे। उनके पश्चात जय वर्मा चतुर्थ कम्बुज देश का राजा बना। यह जय वर्मा चतुर्थ यशो वर्मा का बहनोई था। हर्ष वर्मा, ईशान वर्मा और जय वर्मा चतुर्थ किस किस वर्ष में और किन किन परिस्थितियों में राजा के पद को प्राप्त किया करने में सफल हुए यह स्पष्ट नहीं है। अनेक अभिलेखों में राजा हर्ष वर्मा का उल्लेख मिलता है। वाद चकेत स्थल अभिलेख में यशो वर्मा के पुत्र हर्ष वर्मा द्वारा अद्रवयाद पुरेश शिव के मंदिर को दिए गए एक दान का वर्णन है और इस अभिलेख के खमेर भाषा पर शक संबद 834-912 ईस्वी अंकित है, पर अभिलेख का यह भाग खंडित दशा में है। अतः 934 शक संबद का उल्लेख किस प्रसंग में हुआ है यह स्पष्ट नहीं है। 912 ईस्वी में हर्ष वर्मा कम्बुज का राजा था। यह अनुमान इस अभिलेख से अवश्य किया जा सकता है। तुओल कुल के अभिलेख में 847 शक 925 ईस्वी में ईशान वर्मा की सेवा में प्रस्तुत एक निवेदन का उल्लेख है जिससे यह सूचित होता है कि 925 ईस्वी में कम्बुज के राज सिंहासन पर राजा ईशान वर्मा द्वितीय विराजमान था। इस दशा में हर्ष वर्मा के शासनकाल का अंत 925 ईस्वी के पूर्व ही हो जाना चाहिए। इसी को दृष्टि में रखकर अनेक ऐतिहासिकों ने हर्ष वर्मा का शासनकाल 908 से 922 ईस्वी तक निर्धारित किया। 922 तक कम्बुज देश हर्ष वर्मा के शासन में रहा था, इस बात का संकेत एक अन्य अभिलेख में भी मिलता है। तो तूल पेई में उपलब्ध हुआ है जो यह लेख खंडित है और इसमें राजा के नाम का प्रारंभ ह से हुआ है जिसका कारण इसे हर्ष वर्मा का माना गया है। इस अभिलेख पर 844 शक 922 ईस्वी अंकित है। संभवतः 922 ईस्वी में हर्ष वर्मा की मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात उसका छोटा भाई ईशान वर्मा कम्बुज देश का राजा बना था। मृत्यु के पश्चात हर्ष वर्मा को रुद्रलोक का विरुद्ध दिया गया था। ईशान वर्मा द्वितीय के शासनकाल की कोई घटना ज्ञात नहीं है। तुओल कुल के अभिलेख में उसकी सेवा में प्रस्तुत निवेदन का जो वर्णन है उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ईशान वर्मा के बाद जय वर्मा चतुर्थ कम्बुज के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। जय वर्मा यशो वर्मा का बहनोई था और इंद्र वर्मा के राजकुल का ही नहीं था। ईशान वर्मा के बाद उसने कम्बुज पर किस प्रकार अपना शासन स्थापित किया इस प्रश्न पर विद्वानों ने बहुत तर्क वितर्क किया है और स्वाभाविक रूप से वे इस विषय पर एकमत नहीं है। अधिक प्रचलित मत यह है कि ईशान वर्मा और हर्ष वर्मा के जीवन काल में ही जय वर्मा ने उनके विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था और 921 ईस्वी से कुछ समय पूर्व ही कोहकेर को राजधानी बनाकर स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया था। कम्बुज के कुल देवता देवराज की मूर्ति को भी वह यशोधरपुर से कोहकेर ले गया और उसने उसी को अपने शासन का केंद्र बना लिया था। 28 ईस्वी में ईशान वर्मा द्वितीय की मृत्यु हो जाने पर वह संपूर्ण कंबुज राज का स्वामी हो गया था और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह गया जो उसकी प्रतिस्पर्धी हो। मृत्यु के बाद ईशान वर्मा द्वितीय को परम रुद्र लोक का विरुद्ध प्रदान किया गया था। जय वर्मा चतुर्थ ने अपने सयाल पत्नी के भाई यशो वर्मा के पुत्रों के विरुद्ध विद्रोह कर शक्ति प्राप्त की थी और इसीलिए यशोधरपुर के स्थान पर कोहेकुर में अपनी नई राजधानी का निर्माण किया था। यह स्थान अंगकोट थोम के 50 मील उत्तर पूर्व में है और हरा भरा न होकर उत्तर भूमि के रूप में है, पर जयवर्मा चतुर्थ ने वहां जिस नई नगरी का निर्माण कराया था उसके भग्नावशेष अब तक भी विद्यमान है जो उसकी विशालता तथा समृद्धि को सूचित करते हैं। इन भग्नावशेषों में एक मुख्य मंदिर, 12 गौण मंदिर तथा एक कृत्रिम जलाशय के खंडहर उल्लेखनीय है। इस राजा द्वारा बनाए गए हुए मंदिर तथा उसमें प्रतिष्ठापित मूर्तियों का वर्णन अनेक अभिलेखों में भी विद्यमान है। ये अभिलेख खमेर भाषा में है। इनमें प्रस्थ अंदोन अभिलेख विशेष महत्व का है। उसमें शिव, गंगा, विष्णु, ब्रह्मा, उमा और भारती की स्तुति के पश्चात यशो वर्मा, हर्ष वर्मा, ईशान वर्मा और जय वर्मा की प्रशस्तियां दी गई हैं और जय वर्मा द्वारा 81 हाथ की ऊंचाई पर लिंग की स्थापना का उल्लेख है। कोहकेर के भग्नावशेषों में भी 120 फीट ऊंचे एक आधार के खंडहर विद्यमान है जिसका निर्माण संभवतः लिंग या कुल देवता को प्रतिष्ठापित करने के लिए ही किया गया था। जय वर्मा चतुर्थ के शासनकाल में कंबुज देश की सेनाओं द्वारा चंपा पर आक्रमण किया गया था और चंपा का राजा उनके सम्मुख नहीं टिक सका था। इसकी सूचना हमें ज्ञात नहीं है। 942 ईस्वी में इस राजा की मृत्यु हुई और मृत्यु के पश्चात इसे परम शिव पद का विरुद्ध प्रदान किया गया था। हर्ष वर्मा द्वितीय। जय वर्मा चतुर्थ के बाद उसका पुत्र हर्ष वर्मा द्वितीय कंबुज देश के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इस राजा के समय के केवल 2 अभिलेख उपलब्ध हैं। एक फनम बयान अभिलेख है जिसमें उत्पन्न केश्वर शिव की स्तुति के अनंतर राजा जय वर्मा चतुर्थ की प्रशस्ति दी गई है और हर्ष वर्मा द्वितीय के राजा बनने का वर्ष शक संबंध 833 दिया गया है। दूसरा अभिलेख वात्कदेई कार तेल का है, उसमें भी इस राजा के राज्यारोहण का उल्लेख मिलता है, पर इन अभिलेखों से हर्ष वर्मा द्वितीय के शासनकाल की किसी घटना पर प्रकाश नहीं पड़ता। वस्तुतः इस राजा का शासनकाल बहुत स्वल्प था। उसने केवल 2 साल राज्य किया और उसके बाद राजेंद्र वर्मा ने कंबुज देश के राज सिंहासन को हस्तगत कर लिया। मृत्यु के पश्चात हर्ष वर्मा द्वितीय के लिए ब्रह्मलोक विरुद्ध का प्रयोग किया गया था। राजेंद्र वर्मा। अनेक अभिलेखों में राजेंद्र वर्मा को हर्ष वर्मा द्वितीय का बड़ा भाई कहा गया है। इससे यह अनुमान किया गया है कि राजेंद्र वर्मा भी जय वर्मा चतुर्थ का ही पुत्र था, पर प्रश्न यह था कि यदि राजेंद्र वर्मा हर्ष वर्मा का सगा बड़ा भाई था तो उससे पहले हर्ष वर्मा द्वितीय क्यों सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। विविध अभिलेखों के आधार पर इस समस्या पर भी विद्वानों ने बहुत तर्क वितर्क किया है, पर अब राजेंद्र वर्मा के प्रेरूप अभिलेख में इस समस्या का संतोषजनक रूप से समाधान हो गया है। उसके अनुसार राजा यशो वर्मा की 2 बहनें थीं, जय देवी और महेंद्र देवी। जय देवी का विवाह जय वर्मा चतुर्थ के साथ हुआ था और उनके पुत्र का नाम हर्ष वर्मा द्वितीय था। महेंद्र देवी का विवाह महेंद्र वर्मा नामक व्यक्ति से हुआ था और उनके पुत्र का नाम राजेंद्र वर्मा था। जय देवी बड़ी बहन थी, अतः पहले उसके पुत्र को राज सिंहासन का अधिकारी माना गया। यद्यपि वह आयु में राजेंद्र वर्मा से छोटा था, महेंद्र वर्मा भी कुल की दृष्टि से साधारण व्यक्ति न होकर एक प्रतिष्ठित राजकुल में उत्पन्न हुआ था। यह भी प्रेरूप के अभिलेख में प्रतिपादित किया गया है। उसके अनुसार कौंडिन्य और सोमा के वंशज बालादित्य की भांजी सरस्वती थी जिसका विवाह विश्वरूप नामक ब्राह्मण के साथ हुआ था। इन्हीं के वंशजों में आगे चलकर वेदवती नामक कन्या हुई। महेंद्र वर्मा का संबंध इसी वेदवती के कुल के साथ था और इसी कारण राजेंद्र वर्मा को भी राजकुल का व्यक्ति माना जा सकता है। राजेंद्र वर्मा का कुल चाहे कोई भी क्यों न हो, पर इसमें संदेह नहीं कि वह एक प्रतापी राजा था और उसके शासनकाल में कंबुज देश उन्नति तथा समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हुआ था। इस राजा के अनेक अभिलेख उपलब्ध हैं जो विशद प्रशस्तियों के रूप में 874 शक संबत 952 ईस्वी में उत्कीर्ण मेबोन अभिलेख में 218 श्लोक हैं और 893 शक में उत्कीर्ण प्रेरूप अभिलेख की श्लोक संख्या 298 है। इन अभिलेखों के कतिपय श्लोक शार्दुल विक्रीडित और स्त्रग गधरा छंदों में भी हैं, जिनके कारण इनके कलेवर का बहुत विशाल हो गया है। इनके अतिरिक्त 7 अन्य अभिलेख हैं जो या तो राजेंद्र वर्मा द्वारा उत्कीर्ण कराए गए थे और या उसके शासनकाल के हैं। यद्यपि इन अभिलेखों का मुख्य विषय राजेंद्र वर्मा की वंशावली तथा उसके वंश के विविध राजाओं के दान पुण्य तथा धर्म कृतियों का उल्लेख करना है, पर प्रसंगवश उनसे कुछ राजनीतिक घटनाओं का भी संकेत मिल जाता है। उसके शासनकाल की प्रधान घटना यशोधर पूर्व को फिर से कंबोज देश की राजधानी बनाना है। इस नगरी की स्थापना राजा यशोवर्मा द्वारा की गई थी, पर जयवर्मा चतुर्थ ने कोहकेर में अपनी नई राजधानी बनाई थी, जो हर्षवर्मा द्वितीय के समय में भी कंबोज की राजधानी रही थी। चिरकाल तक उपेक्षित रहने के कारण यशोधरपुर उजड़ गया था, पर राजेंद्र वर्मा द्वारा उनका पुनरुद्धार किया गया और वहां से महेंद्र प्रसाद नाम से एक नए राजमहल का निर्माण कराया गया, जिसमें एक स्वर्ण गृह भी था। यशो वर्मा द्वारा निर्मित जलाशय के मध्य में राजेंद्र वर्मा ने एक मंदिर बनवाया और इस नगरी को विभूषित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। अंगकोर थोम के रूप में यशोधरपुर का जो विकास बाद के समय में हुआ, उसका सूत्रपात राजेंद्र वर्मा द्वारा ही कर दिया गया था। चंपा और कंबुज राज्यों में जो संघर्ष चिरकाल से चल रहा था, राजेंद्र वर्मा के शासनकाल में उसने अत्यंत उग्र रूप प्राप्त कर लिया था। 882 शक 960 ईस्वी में उत्कीर्ण बाचूम के अभिलेख के अनुसार राजेंद्र वर्मा ने चंपा आदि अनेक परराष्ट्रों पर विजय प्राप्त की थी। इस अभिलेख में उसे चंपा आदि के लिए कालाग्नि के समान कहा गया है। चंपादीप राष्ट्रानाम दग्धा कलानकलाकृति। इसी प्रकार प्रिय रूप के अभिलेख में इस राजा द्वारा चंपादीप के बाहुबल द्वारा जीते जाने का उल्लेख है। चंपादीपम बाहुबलेन जितवा। 952 ईस्वी में उत्कीर्ण कराए गए मेबोन शिलालेख से सूचित होता है कि राजेंद्र वर्मा के आज्ञानुवर्ती वीर सैनिकों ने चंपाधीराज की नगरी को भूमिसात कर दिया था और समुद्र के समान गहरी उसकी परिखा भी उन द्वारा नष्ट कर दी गई थी। यस्य सागर गंभीर परिखा भस्मात् कृता चंपाधीराज नगरी वीरैर राज्ञानुकारी भी। राजेंद्र वर्मा के विविध अभिलेखों में चंपा को लिखा है कि कंबुज के लोगों द्वारा पूनगर मंदिर की एक स्वर्ण प्रतिभा उठा ले जाई गई थी, जिसके स्थान पर चंपा के राजा ने 965 ईस्वी में एक प्रस्तर मूर्ति प्रतिष्ठापित कर दी थी। हैमी यत प्रतिमाम पुवम येन दुष्प्राप्ते जसा न्यास्ताम लोभादि सक्रांतामृता उद्दत कंबुजा। पूनगर के मंदिर में ही एक अन्य शिलालेख है, जिसमें 887 शक 918 ईस्वी में देवी भगवती की सुवर्ण प्रतिमा के प्रतिष्ठापित किए जाने का उल्लेख है। सन 918 में पूनगर मंदिर में जो स्वर्ण मूर्ति स्थापित की गई थी, उसे ही राजेंद्र वर्मा की सैनिक 10वीं सदी के मध्य भाग में कभी वहां से उठा ले गए थे, जिसके स्थान पर 965 ईस्वी में चंपा के राजा द्वारा एक प्रस्तर मूर्ति प्रतिष्ठापित कर दी गई थी। चंपा के अतिरिक्त अनेक राज्यों पर भी राजेंद्र वर्मा द्वारा आक्रमण किए गए थे, यह तो उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है, पर ये राज्य कौन से थे इस विषय में कोई संकेत अभिलेखों से नहीं मिलता। पर इसमें संदेह नहीं कि राजेंद्र वर्मा एक शक्तिशाली राजा था और उसके शासनकाल में कंबुज का राज अक्षुण्ण रहा था। संभवतः अपने अधीनस्थ प्रदेशों के विद्रोह का दमन करने के लिए ही राजेंद्र वर्मा को चारों दिशाओं में आक्रमण करने की आवश्यकता हुई थी। 968 ईस्वी में जब इस राजा की मृत्यु हुई, तो उसके लिए शिवलोक विरुद्ध का प्रयोग किया गया था। अपने जीवन काल में ही उसने अपने पुत्र जयवर्मा को युवराज के पद पर नियुक्त कर दिया था, अतः उसके बाद वही कंबुज के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। राजेंद्र वर्मा स्वयं पौराणिक हिंदू धर्म का अनुयायी था और उसने शिव पार्वती विष्णु ब्रह्मा और राजेंद्रेश्वर शिव की अनेक मूर्तियां मंदिरों में प्रतिष्ठापित कराई थी, पर बौद्ध धर्म के प्रति भी उसका अनुराग था। मेवोन के अभिलेख से सूचित होता है कि उसने बौद्ध मत का भी भली भांति अध्ययन किया था। जयवर्मा पंचम। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 968 ईस्वी में जब जयवर्मा पंचम कंबुज देश का राजा बना, तो उसकी आयु अधिक नहीं थी। यह इस बात से सूचित होता है कि राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद भी वह अपने गुरु से विद्या अध्ययन करता रहा था। उसने 33 वर्ष तक राज किया और 1001 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात उसे परम वीर लोक विरुद्ध दिया गया। जयवर्मा पंचम के सुदीर्घ शासनकाल 968 से 1001 ईस्वी की कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना में ज्ञात नहीं है। प्रसत शेख तातुई अभिलेख से सूचित होता है कि जयवर्मा ने भी चंपा पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में उसने सफलता भी प्राप्त की थी। एक अभिलेख में उस द्वारा अपने नाम से जयनगरी नामक नगर के निर्माण का भी उल्लेख है, पर जयवर्मा पंचम के अभिलेखों में प्रधान रूप से उस द्वारा बनाए हुए मंदिरों तथा उनमें प्रतिष्ठापित मूर्तियों का ही वर्णन है। एक अभिलेख में इस राजा के विषय में लिखा है कि उसने वर्णों और आश्रमों को दृढ़ आधार पर स्थापित कर भगवान को प्रसन्न किया था। जयवर्मा पंचम के समान उसकी भगिनी इंद्रलक्ष्मी तथा उसके भगिनी पति देव भट्ट दिवाकर भी धर्म के प्रेमी थे, उनके विषय में एक अभिलेख में ये वाक्य आए हैं। भूपाल राजेंद्र वर्मा के जमाता और राजा जयवर्मा के भगिनी पति देव भट्ट दिवाकर थे, जिन्होंने मधुवन में तीन देवता स्थापित करके भद्रेश्वर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा की थी। भद्रेश्वर को स्वर्ण और दूसरे बहुमूल्य रत्नों के एक यान अद्भुत रत्न आभूषण देकर बहुत सी भूमि तांबा चांदी सोना गाय दास दासी जैसे घोड़े और हाथियों के देने की बात है। देने के बाद देव दिवाकर ने स्वयं आज्ञा दी कि इस स्थान पर आने वाले के भोजन के लिए प्रतिवर्ष 6 खारी चावल दिया जाए। गृहकाल का काल 1001 ईस्वी में जयवर्मा पंचम की मृत्यु के पश्चात कंबुज के राज सिंहासन के लिए गृह कलह प्रारंभ हो गया और अनेक व्यक्तियों ने अपने को राजा घोषित कर दिया। इसका कारण शायद यह था कि जयवर्मा पंचम की कोई संतान नहीं थी जिसे सब कोई निर्विवाद रूप से राजा स्वीकार कर लेते। 923 शक 1001 ईस्वी का प्रसत खना का एक अभिलेख है जिसे राजा उदयादित्य वर्मा द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। इस अभिलेख में उदयादित्य वर्मा के पूर्वजों की वंशावली दी गई है और जयवर्मा पंचम के साथ उनका संबंध भी सूचित किया गया है। उसके अनुसार उदयादित्य वर्मा की माता जयवर्मा पंचम की पटरानी की बड़ी बहन थी। संभवतः जयवर्मा की पटरानी की कोई संतान नहीं थी, इसी कारण उनके भांजे उदयादित्य वर्मा ने अपने को राज सिंहासन का न्याय अधिकारी मान लिया था, पर अन्य लोग इस अधिकार को स्वीकृत करने को उद्यत नहीं हुए। 1001 ईस्वी ही एक अन्य अभिलेख रोमन रोमस शिलालेख मिला है जिसमें राजा सूर्य वर्मा का उल्लेख है। इससे सूचित होता है कि उदयादित्य वर्मा के साथ ही सूर्य वर्मा ने भी अपने को राजा घोषित कर दिया था। इन दो के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति ने भी इस समय राजा का पद ग्रहण कर लिया था। इसका नाम जयवीर वर्मा था, जिसका एक अभिलेख 925 शक 1003 ईस्वी में तुवल प्रसत में उत्कीर्ण कराया गया था। इस प्रकार जयवर्मा की मृत्यु के पश्चात कंबुज देश के राज सिंहासन के लिए तीन दावेदार मैदान में आ गए थे। इनमें से उदयादित्य वर्मा के संबंध में कोई सूचना 1002 ईस्वी के बाद में नहीं मिलती। वह किस प्रकार गृह कलह के क्षेत्र से पृथक हो गया यह पूर्णतया अज्ञात है, पर सूर्य वर्मा और जयवीर वर्मा में अनेक वर्षों तक संघर्ष चलता रहा, जिसमें अंत योगत्वा सूर्य वर्मा को सफलता प्राप्त हुई। इन दोनों राजाओं के जो अभिलेख मिले हैं उनके प्राप्त स्थानों से सूचित होता है कि यशोधरपुर अंगकुर क्षेत्र तथा कंबुज के देश पश्चिम प्रदेश जयवीर वर्मा के अधिकार में थे और कंबुज के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर सूर्य वर्मा का कब्जा था। कोई 9 साल तक इन दोनों राजाओं में संघर्ष चलता रहा, जिसका अंत सूर्य वर्मा की विजय से हुआ 1010 ईस्वी में। जयवीर वर्मा के कुल का कोई परिचय अभिलेखों में नहीं मिलता, पर सूर्यवर्मा से जो अनेक प्रशस्तियां उपलब्ध हैं उनमें उसे राजा इंद्रवर्मा के कुल में उत्पन्न कहा गया है और उसकी पत्नी श्री वीर लक्ष्मी का संबंध हर्ष वर्मा तथा ईशान वर्मा के कुल के साथ बताया गया है। इस राजा के विषय में एक अन्य मत का प्रतिपादन प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान सैदे ने किया है। उनके मत में सूर्यवर्मा मलाय का राजकुमार था और जयवर्मा पंचम के पश्चात की राजनीतिक परिस्थिति से लाभ उठाकर उसने कंबुज देश पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। अभिलेखों में सूर्य वर्मा के साथ कमत्व वन उपाधि का प्रयोग किया गया है, जिसे सैदे ने मलाय के त्वन का रूपांतर माना है। मलाय की भाषा में त्वन का अर्थ राजकुमार या राजा है। 15वीं सदी के पाली ग्रंथ चाम देवी वंश में सिद्ध मनगर के राजा के पुत्र कंबुज के राजा द्वारा हरिपुंज पर आक्रमण करने का उल्लेख है। यह आक्रमण 1056 से 57 ईस्वी के लगभग हुआ था, जिस समय की कंबुज देश के राज सिंहासन पर सूर्य वर्मा विराजमान था। अतः जिस कंबुज राज ने हरिपुंजय पर आक्रमण किया था, श्याम देवी वंश के अनुसार वह सिरिधम्म नगर के राजा का पुत्र था, क्योंकि सिरिधम्म नगर की स्थिति मलाया प्रायद्वीप में लिगोर नामक स्थान पर थी। अतः सेदे के मत में सूर्य वर्मा मूलतः मलाया का एक राजकुमार था, जिसने की बाद में कंबुज के राज सिंहासन को हस्तगत कर लिया था। संभव है कि मलाय के जिस राजकुल में सूर्य वर्मा उत्पन्न हुआ था कंबुज के इंद्र वर्मा के कुल के साथ भी उसका संबंध रहा हो, पर सेदे के मंतव्य को स्वीकार कर सकने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जयवर्मा पंचम की मृत्यु के बाद कंबुज में जो गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था उसमें सूर्य वर्मा के अधिकार में कंबुज के उत्तर पूर्वी प्रदेश थे और पश्चिमी प्रदेश पर जयवीर वर्मा का प्रभुत्व था। यदि सूर्य वर्मा मलाय का राजकुमार होता और उसने वहां से कंबुज को अधिकृत करने का प्रयत्न किया होता तो पहले पश्चिमी कंबुज को अपने अधिकार में करता। अपने प्रतिद्वंदी जयवीर वर्मा को युद्ध में परास्त कर सूर्य वर्मा कंबुज देश के राज सिंहासन को अधिगत करने में समर्थ हुआ। 1010 ईस्वी अनेक अभिलेखों के अनुसार सूर्य वर्मा ने 9 वर्षों के संघर्ष के पश्चात 924 शक 1002 ईस्वी में राजपद प्राप्त कर लिया था। यह तो स्पष्ट है कि जयवीर वर्मा को अंतिम रूप से परास्त करने में 9 वर्ष का समय लगा था, पर सूर्य वर्मा अपने को कंबुज देश का वैध राजा उससे पूर्व ही 1002 ईस्वी में मानने लगा था, जबकि संभवतः उदयादित्य वर्मा की मृत्यु हो गई थी। जय वर्मा पंचम की मृत्यु के बाद के 10 वर्षों का इतिहास प्राय अस्पष्ट है, पर इसमें संदेह नहीं कि 1010 ईस्वी तक सूर्य वर्मा अपने विपक्षियों को परास्त कर कंबुज देश पर अपना आधिपत्य सुदृढ़ रूप से स्थापित कर चुका था और 40 वर्ष तक इस राजा ने सुव्यवस्थित रूप से कंबुज देश का शासन किया। सूर्य वर्मा प्रथम ने कंबुज के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ हुआ, जिसमें इस देश की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती चली गई। तीसरा, शक्तिशाली कंबुज साम्राज्य। कंबुज राज्य का विस्तार। अंगकोर क्षेत्र में यशोधर पूर्व और कोहेकेर